शांति। इस ईश्वरी ज्ञान मार्ग को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहने वाले सच्चे सच्चे कर्म योगी इस भट्ठी में आए हुए सभी युगल मूरत बहनों और भाइयों, यह सीजन जो भट्ठियों की सीजन चल रही है, इसमें हर एक ग्रुप की अपनी विशेषता और उनकी भट्ठी का अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य के अनुसार निमित बने हुई जो बहने व भाई उन्होंने बहुत बहुत सुंदर विषय भट्ठी के रखे हुए हैं। इस क्लास का विषय जो है, जैसा अभी बहन जी से सुना, ऐसा विषय है जो जैसे कहा जाता सभी वेदों शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता का सार भी है और अंतिम संदेश भी है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यूं तो ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य है घर घर को स्वर्ग बनाना। जब घर घर स्वर्ग बने तो भारत स्वर्ग बने, भारत स्वर्ग बने तो विश्व में शांति हो। फिर प्रश्न उठता है, जब घर घर स्वर्ग बनाना है तो ऐसा विषय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा ये भट्ठी का विषय क्यों रख दिया? मैं तो समझता हूं बहुत वर्षों से जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, युगल रूप से ही चल रहे हैं, जैसे ही ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो सभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आना और उस व्यवहार में कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, उसका अनुभव प्राप्त करना, ये सभी अनुभवी हैं। पर जीवन की यात्रा में सभी जानते हैं कि यात्रा करते करते ऐसा भी समय आता है, कभी ईश्वरी परिवार में से ही कोई ना कोई गुड बाय करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले 50 साल के अंदर जब से ज्ञान लेना शुरू किया और निमित्त बने हुए माता पिता से, बड़ी दादियों से, बड़े भाइयों से बहुत समीप का संबंध रहा, और जब उनके परिचय में आए तो मन ऐसा होता था बस ईश्वरी परिवार जैसा आनंद और कहीं नहीं है। और ये एक हम सब की इच्छा कह लो, स्वार्थ कह लो, हर आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर जब पार्ट बजाती है तो एक ही इच्छा रहती है, सदा आनंद में रहें। और सभी बाबा के ब्राह्मण वत्स जो हैं उनके मन में तो यही रहता है कि ईश्वरी आनंद में सदा रहें। और संग का रंग मिलता है ऐसी आत्माएं जिन्होंने आद में 14 साल तो बच्ची में रहकर तपस्या की हुई, और उस तपस्या के बाद जो उन्होंने सेवा केंद्रों पर जाकर के हम सबको जागृत किया, और जिस तरह का उनके अपने जीवन का हमारे सामने एक मिसाल कायम किया, उनको देखकर उनके संपर्क में आकर उनसे शिक्षाएं पाकर उनका स्नेह पाकर दिल तो होती कि सदा ही ये हमारे साथ रहें और हम इनके साथ रहें। लेकिन चलते चलते देखने में आता है कि हमारी भी जो वो सूक्ष्म इच्छा है वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है। मनुष्य चाहत कुछ और, ईश्वर चाहत कुछ और, भगवान की इच्छा कुछ और है, और उसके कारण इस बेहद के सृष्टि ड्रामा के अंदर सर्व का पार्ट अपना अपना है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने तो कर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
ये ड्रिल अच्छी है। अचानक गीत शुरू होता है और 1 सेकंड में मनमना भव हो जाते हैं। तो आपसे शेयर कर रहा था कि जैसे लौकिक परिवार के अंदर भी माता पिता बाल बच्चे सब साथ में होते हैं, सब स्वस्थ होते हैं, सब अपने अपने कारोबार में होते हैं, रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से ईश्वरी परिवार में है, ये ईश्वरी रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल देखते हैं, मधुबन में या शांतिवन में लगातार सारा साल बाबा के बच्चे आते हैं, ईश्वरी आनंद लेते हैं, जाते हैं, खुशी की खुराक मिलती रहती है। लेकिन इस सब होते हुए जिन आत्माओं से बहुत बहुत ईश्वरी सुख मिलता है उनके प्रति भावनाएं हमारी बहुत ऐसी मन में उत्पन्न होती हैं कि ये सदा हमारे साथ रहें। बाबा का ज्ञान सुनते हैं, पहले दिन से शुरू हुआ और समय बीतता जाता है, ایک سال، دو سال، تین سال، دس سال، پچیس سال، چالیس سال، پچاس سال، ہاں جو شروع کی آتمائیں ہیں ان کا تو 72 سال سے اوپر ہو گیا. ایک چیز وشیش دیکھنے میں آتی ہے، ہم سبھی آتماؤں کو خاص کر جو ستیوگ سے آد سے آئی ہوئی آتمائیں ہیں ان کو یہ رنگ منچ بہت پریے ہے. وہ اس سرشٹی ڈراما میں اپنا پارٹ انت تک بجانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ سبھی ہیرو ایکٹر ہیں، سبھی کا پارٹ سندر بھی ہے، سرشٹ بھی ہے اور سب کو سکھ دینے والا ہے، سویم کو بھی، ساتھیوں کو بھی، سنسار کو بھی. لیکن جیسا اس ڈراما کا سین ہے ابھی پریورتن کا سمے، ایک سمے ہے ستیوگ، ستیوگ سے تریتا، تریتا سے دواپر، دواپر سے کلیوگ، ابھی کا سمے کون سا ہے؟ کون سا سمے ہے؟ مہا پریورتن کا ہے. وہ مہا پرلے بولتے ہیں اور بابا کہتا یہ مہا پریورتن کا سمے ہے. گھور کلیوگ سے گھور ستیوگ ہونا ہے، گھور ستیوگ نہ کہہ کر کے سندر ستیوگ ہونا ہے. اس کے سنگم پر بیٹھے ہیں. تو یہ جو سنگم یوگ ہے اس سمے کا کچھ پارٹ بڑا وچتر ہے، انوکھا ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل آتی ہے. اگر نمت بنی ہوئی ایسی آتمائیں جنہوں نے پانچ وکاروں پر سمپورن وجے پالی ہے، جنہوں نے اپنا یوگ بل اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ جو ستیو کا پارٹ بجانا ان کے لیے ایک نیچرل ہو گیا ہے، ان کا پرانا سب حساب کتاب چکتو ہو چکا ہے اور بھوش کے لیے بھی اتنا انہوں نے جمع کر لیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پرتی جتنی پرجا تو چھوڑو لیکن سارے کلپ میں جتنی ان کی وندنا پوجا جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے انہوں نے بہت بہت سیوا کا پارٹ بجا لیا ہے. ایسی مہان، ایسی شریشت آتماؤں کے لیے بابا کا ہمیشہ یہ ایک اشارہ رہا ہے کہ ان کا ایڈوانس پارٹی میں پارٹ ہے. ستیوگ میں سری لکشمی سری نارائن کا جب راج شروع ہوگا اس کی بات الگ ہے، لیکن اس کے پہلے بیچ کا پارٹ جو ہے اس میں بہت شکتیشالی آتماؤں کا پارٹ ہے پریورتن کے سمے کا. تو ایسی ایڈوانس پارٹی والی آتمائیں جب جاتی ہیں بابا کے پاس، ان کا پلان کچھ اور ہے. پر ہم گیانی تو آتمائیں بھی، برہمن آتمائیں بھی، جو ہمیں ان آتماؤں کے دوارا سکھ ملا ہوا ہے، سنیہ ملا ہوا ہے اور ایشوری پالنا ملی ہوئی ہے، اس کے کارن تھوڑا تھوڑا من میں آتا ہے. ہاں ابھی بھی جیسے بھائی بہنیں ملتے ہیں تو کس کو خاص یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ آج سے سنتے آتے ہیں من منا بھو مدیاجی بھو، لیکن خاص دادی جی کو یاد کرتے کیونکہ وہ نمت بنی انیکوں کو یہ پاٹھ پڑھانے کے لیے. لیکن آپ سوچئے पहले पहले जब मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा होगा, उस समय परिवार को किस तरह का शौक लगा होगा। बिल्कुल नाम न चित, सोचेगा नहीं कोई कि ऐसे इतने जल्दी मातेश्वरी जी 42 साल या 44 साल की उम्र में शरीर छोड़ेंगे। पर ईश्वरी प्लान जो है उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। मेरे जीवन में सबसे पहले वो शौक था ईश्वरी जीवन में कि ये क्या हुआ। 6-7 साल ही हुए थे अभी, इतना मम्मा से प्यार मिला, इतनी गाइडेंस मिली, इतने श्रेष्ठ संस्कार मिले और अचानक मम्मा शरीर छोड़ दिया। और 2 साल बीते थे तो दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ दिया। उनसे इतना प्यार मिला था, गाइडेंस मिली थी, सेवा के अनेक तरीके सीखे थे। और उसके 2 साल के बाद बाबा, साकार बाबा ने शरीर छोड़ दिया। आप सोचिए, एक के बाद एक शौक लगते रहे। शौक समझते हैं ना, बिजली का शौक। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेष बात, हम सबको नष्टो मोहा बनाने के लिए जो अभी तक मैं देख रहा हूं वो है शिव बाबा का हम बच्चों के साथ वायदा। जब तक संगम युग है बाप दादा आपके साथ रहेंगे। बाप दादा का पार्ट सबसे विचित्र है। दूसरी महान आत्माएं, ईश्वरी परिवार की भी महान आत्माएं, उनका पार्ट एडवांस पार्टी का अलग है। लेकिन हम सारे ब्राह्मण परिवार का जो कनेक्शन है, पहले दिन से आने से जो मिलता है कनेक्शन, दे सहत दे के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो, वो धीरे धीरे उसकी पराकाष्ठा मन में आ जाती है कि अंत समय, जैसे लौकिक रीत में भी अंत समय क्या याद दिलाते हैं, राम राम, राम राम कहते हैं, राम नाम संग है। तो ईश्वरी जीवन में भी वास्तव में वो तो यादगार है, प्रैक्टिकल तो यहां है कि दे सैत दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर, एक पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, जिसको मन मना भव का है। इसकी जितनी स्मृति का स्वरूप बनते जाते हैं उतना शॉक प्रूफ बन जाते हैं। कारण ये बहुत धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाती है स्मृति स्वरूप बनने की, कि आत्मा अविनाशी है, पिता परमात्मा अविनाशी है, हम आत्माएं अविनाशी हैं, हम आत्माएं ये पार्ट बजा रहे हैं, जिस समय हमारे पार्ट की जहां जरूरत होगी हम वहां जाएंगे, जो गई हैं आत्माएं उनका जहां आवश्यकता थी वो वहां गए हैं। क्योंकि ईश्वरी कार्य के निमित्त हैं। बाबा के बच्चे भटकने वाली आत्माएं नहीं है, कोई दुख पाने वाली आत्माएं नहीं है, कोई ऐसे वैसे स्थान पे जाने वाली आत्माएं नहीं है। नहीं, जिस कार्य के निमित्त हैं सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर बुद्धि में आता है कि बड़ों के जीवन से हम जो शिक्षा ले सकते हैं उसको धारण करें तो सच्चा सच्चा उनके प्यार का रिटर्न हम देते हैं। और बाबा का जो इशारा है कि मन मेरे साथ लगाओ, तो जितना जितना वास्तव में बाबा की याद में मन लगता रहता है, और बाबा ने खास साकार के द्वारा भी ये प्रैक्टिस कराई थी, अव्यक्त बाबा के द्वारा भी कराई है, अधिक से अधिक समय याद की तरफ बुद्धि लगी रहे। चलते फिरते, कारोबार करते, जिस भी कार्य के निमित्त है वहां होते हुए भी मनमना भव की प्रैक्टिस करते रहें, मन बाबा के साथ लगाने की प्रैक्टिस करते रहें। ये प्रैक्टिस ही हमें मदद करती है एक तो फियरलेस बनने की। मन से डर निकल जाता है, निडर बना देती है, और दूसरा नष्टो मोहा बनाने की। वास्तव में क्यों नष्टो मोहा बनना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? तो मोह, सभी जानते हैं मोह पांच विकारों में से एक चीज है। पांच विकार हमारा वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। स्वाभाविक स्वरूप हमारा है पवित्र स्वरूप, ईश्वरी स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, मोह नहीं है। इस समझ के आधार से हम जब अपने मन में ये धारणा पक्की करते हैं कि आत्मिक स्नेह होना स्वाभाविक स्वरूप है और होना ही चाहिए, नहीं तो सत्युगी जीवन भी क्या होगी। अगर मोह ये परिवारिक या तो आत्मिक प्यार ना हो तो वहां की जीवन का सुख क्या होगा। सच्चे सुख का आधार जो है वो पवित्रता है, सच्चे सुख का आधार जो है वो आत्मिक स्नेह है। अगर वो है ही नहीं तो नीरस जीवन हो जाएगी। और जबकि देवताओं की जीवन के लिए क्या कहा जाता है, सब रस है उनके अंदर। लेकिन रस है, रस माना स्वीटनेस है, मिठास है, जहर नहीं है। पांच विकार जो हैं उसको क्या कहा गया है, अमृत है या जहर है? जहर है। तो मोह भी उनमें से ही एक है करके ये कहा जाता है ये मीठा जहर है। जहर के भी रूप हैं, बहुत कड़वा भी जहर है तो मीठा भी जहर है। काम क्रोध जो है वो कड़वा जहर है, और मोह क्या है, मीठा जहर है। तो इसलिए जो बीज है दुख और अशांति का, بابا نے اس بیج کو ہی ختم کرنے کے لیے ہم بچوں کو اشارہ دیا. ایشوری سنیہ ہو, بہت آپسی پیار ہو, ایک دو کو سکھ دینے والا پیار ہو, ایرشا دویش والا پیار نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سے پیار ہے تو دوسرے سے پھر وہ اسی کے کارن ایرشا ہو جائے, دویش ہو جائے, وہ نہیں چاہیے. یہ بے حد کے ایشوری پریوار کے ناطے سے جب ہم سوچتے ہیں کتنا آنند رہتا ہے, اس میں بڑا ہی سکھ ملتا ہے. کیوں؟ سچا پیار اس میں ہے جو ایک دو کے لیے شبھ بھاونا رکھتے ہیں, ایک دو کے سچے سکھ کے لیے منوکامنا رکھتے ہیں, اچھی کامنا رکھتے ہیں, بری کامنا نہیں رکھتے ہیں. تو جتنا بابا کے ساتھ من لگا رہے گا, جیسے بابا کے لیے گائن ہی ہے, وہ سرو کا کلیان کاری پتا ہے, وشو کلیان کاری, تو ان کے بچے کیا ہو جائیں گے پھر؟ سمرتی لبدا نشٹو موہا سمرتی لبدا, یہ ایک ہی کوائن کے دو سائیڈ ہیں. ہاں, ایک روپیہ لے لو نا, ایک سکہ, اس کے دو سائیڈ ہیں. ایک سائیڈ ہے نشٹو موہا, بھائی جو دکھ دینے والی بات ہے اس کو چھوڑنے کا, اس کو ریپلیس کر دو, اس کی جگہ پر ایشوری سنیہ, آتمک سنیہ اور کلیان کی بھاونا. لیکن اس کے لیے چاہیے بہت شکتی, اتنا سہج بھی نہیں ہے اور بڑی مہینتا ہے اس میں. کئی بار تو یہ الجھن ہو جاتی ہے کہ یہ ایشوری سنیہ ہے یا سوکشم میں موہ ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایسے بھی ہم نے بہت اچھی اچھی آتموں کے ایگزامپل دیکھے ہیں جو پریوار میں رہتے, بہت پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ہمارے رمیش بھائی ہیں, اوشا بہن رمیش بھائی, سبھی جانتے ہیں. رمیش بھائی کی ماتا جی کو دیکھا, پریوار میں رہتی تھی. برجمون بھائی ہیں, ان کی ماتا جی, چاچی جی کہتے تھے ان کو, وہ شانتا ماتا, وہ چاچی جی. ایسے اور بھی ماتائیں ہیں, میں تو کیونکہ 50 سال میں کتنی ماتاؤں سے ملا ہوں گا. پریکٹیکل دیکھا, انہوں نے بابا کے گیان کو یتھارتھ سمجھا اور اس کے پھل سوروپ دیکھا کہ کوئی بھی فرق نہیں کسی, سب کے پرتی پیار, سب کے پرتی شبھ بھاونا اور بابا سے سچی پریت, یگ سے سچی پریت. اس لیے ساکار بابا نے ایسی آتماؤں کو نام کیا دیا ہے, خیال میں کسی کو, یگیہ ماتائیں. تو آپ سب پرورتی میں رہنے والے کیا ہو گئے؟ یگیہ ماتائیں اور یگیہ پتائیں. کیونکہ آپ کے من میں ابھی وہ چھوٹے سے پریوار کو سنبھالنے کی بات نہیں, یگیہ کا پورا جواب دار بن گئے. جیسے بہت بڑا کاریہ ہے سارے وشو کو سورگ بنانا, سارے وشو کو پریورتن کرنا, وہ ایک دو نہیں کر سکتے. اکیلا برہما بابا کر لیتا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی تھی, اوم منڈلی بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. صرف اوم منڈلی کر لیتی تو پھر باقی سینٹر کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. सिर्फ भारत में सेंटर खोलने से गाड़ी चल जाती तो विदेश में जानकी दादी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज सारा ईश्वरी परिवार इस बात पर फखुर रखता है, गौरव है। कितने सेवा केंद्र हैं आपके? कितने सेवा केंद्र हैं? सिर्फ 8,000 ही सदा रहेंगे, वो तो 2 साल पहले की बात है। 130 देशों तक आप पहुंच गए हैं, कमाल की बात है। तो ये सब बातों को देखते हुए बेहद में बुद्धि को ले जाना जरूरी है। जितना हमारा दिल और दिमाग बेहद में जाएगा, स्वतः ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। मोह कहां पैदा होता है? आप सब अनुभवी हैं। जहां तेरा मेरा आ गया, जहां हमारा है मोह नहीं रहेगा। हमारा है तो सब प्यारा है, हमारा है तो सबसे न्यारा भी है। हम न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे, और मोह जीत राजा बन जाएंगे। क्योंकि दादी जानकी कभी कभी अपना अनुभव सुनाती, मिसाल देती हैं राजा जनक का मिसाल। तो आप सब क्या हो गए भाई? हाँ, क्या है? प्रैक्टिकल में राजा जनक। तो राजा जनक की खास बात ही आती है, एक तो एक सेकंड में मुझे ईश्वर की अनुभूति कौन करा सकता है, मेन बात। और दूसरी, नष्टो मोहा सिमरती लब्धा बनने की। लेकिन उसका आधार एक ही है कि जब अच्छी तरह से, गहराई से इस बेहद ड्रामा के आद मध्य अंत को समझ लिया जाए और उसके अनुसार वर्तमान कौन सा समय है उसको समझ लिया जाए, और उसमें हम सभी हीरो पार्ट धारियों का पार्ट क्या है उसको समझ लिया जाए। सबसे जो कठिन बात प्रैक्टिकल में कर सकते हैं वही हीरो बन सकते हैं, दूसरे नहीं बन सकते। और सबसे कठिन बात मानी ही ये जाती है, इस देह से, अपनी देह से नष्टो मोहा होना। पर उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, एकदम से हो नहीं सकते। कोई सोचे कोई बात नहीं, कभी भी कुछ हो जाए, नहीं। बहुत समय का जब अभ्यास हो मनमना भव होने का, तो लास्ट में दादी जी का फोटो देखेंगे ना, सभी को पता है, ऐसा जैसे कोई बहुत चिरकाल से बहुत अच्छी गहरी नींद में सोए हो। साकार बाबा का मिसाल, बैठे बैठे और पूरी जानकारी से, क्लास से छुट्टी लेकर के अपने रूम में आके अपने बेड पर बैठ करके दादी जी के हाथ में हाथ दे करके दृष्टि देते देते पंछी उड़ गया। वो कब हो सकता है? वो मैं साकार बाबा को बहुत 10 साल बहुत नजदीक से देखा था। बहुत समय का अभ्यास। बाबा जो हमें कहता है 8 घंटे की याद की यात्रा का अभ्यास करो, बीच बीच में याद का अभ्यास करो, बाबा प्रैक्टिकल खुद करके हम बच्चों को सिखाता था। कर हल्की मुरली थी, बाबा भूल जाता है, ऐसा नहीं है। वो हम बच्चों को सिखाने के लिए लास्ट में कभी कभी बाबा कहता था, ये बाबा के दृष्टि दे रहा है या यही दृष्टि दे रहा है। कारण था, समानता की स्थिति आ चुकी थी। हम लोग देखते थे साकार को, शुरू में देखा, बीच में देखा, लास्ट में देखा। जितना जितना शिव बाबा के साथ में एकजुट होते गए, योग युक्त होते गए, एक सेकंड भी अलग होना बाबा को पसंद नहीं था। मुरली से पहले हम लोग बाबा के रूम में जा करके मिलते थे। बाबा उस समय भी कुछ ना कुछ मुरली की बात सुना करके रिफ्रेश कर देता, फिर मुरली आके सुनाता। बाद में 1967-68, दो साल, उन दिनों में बाबा ने वो बिल्कुल ही स्टॉप करा दिया। नहीं, बाबा बच्चों से क्लास में ही मिलेंगे। इस बाबा को बाबा के साथ मन लगा के रखना है, तब बच्चों को रिफ्रेश करना है। और उसके साथ साथ मनसा सेवा की बात, बैठे एक जगह है, सारे विश्व को जैसे सकाश देना। तो ये सारी बातें जो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, प्रवृत्ति में रहते, अब बाबा की प्रवृत्ति कोई आपसे छोटी तो नहीं थी, हा? आप सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, सोचते होंगे इतने बच्चों को, अपने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और बाबा को कितनों का ध्यान रखना पड़ता था, दादी को कितनों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और दादी ने फिर हम बच्चों को यह भी सिखाया कि निरंतर याद का आधार क्या है। जानते हैं सभी, जब देखेंगे दादी के हाथ में मुरली होती थी, उनके रूम में जाएंगे, मिलने जाएंगे, शाम को जाएंगे, सुबह को जाएंगे, मुरली उनके पास रखी होगी, बड़ी बड़े अक्षरों वाली। तो जिनको इस बात का थोड़ा सा ख्याल रहता है कि अभी समय के अनुसार हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी दिव्य हो, इतनी अलौकिक हो और इतनी स्वीट हो, मिठास चाहिए, रूखापन भी नहीं चाहिए, न्यारापन इतना भी नहीं चाहिए जो रूखापन लगे, और प्यारा इतना नहीं चाहिए जो बिल्कुल मोह लगे। तलवार की धार पर चलने वाली बात आ गई है, और उसका आधार है मन मना भाव। जितना बाबा के साथ मन लगा हुआ है उतना सोल कॉन्शियस रहते हैं, उतना शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, उतना मास्टर ज्ञान सागर के रूप में रहते हैं, ज्ञान सूर्य के रूप में रहते हैं, उतना ही योग की शक्ति रहती है। और उसी के फल स्वरूप जो नेगेटिविटी है, बड़ी सूक्ष्म में छोटी मोटी बातें हैं, वो स्पष्ट मन में आ जाती हैं कि ये राइट नहीं है, उसको फट से निकाल देंगे, भस्म कर देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे फायदे की चीज नहीं है। आज की जो अव्यक्त मुरली सुनी किसी एक भाई ने मुझे खास, इसके बाद की एक मुरली है, वही शब्द ईमेल से भेजे हैं, दादी का फोटो है और उसमें वो शब्द हैं कि अंत समय का जो स्वरूप है उस समय क्या क्या सामने आता है, तो वो और बातें ना आए। क्या कहते हैं अंत समय क्या आना चाहिए, मुख में क्या हो, एक तो कहते गंगा का तट हो, ठीक है, और दूसरा मुख में वो गंगा जल कहते हैं। तो घर घर जो स्वर्ग बन गया है, गंगा तट तो बन गया, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर एक ने अपने अपने घर में जैसा स्थान है योग का कमरा भी बनाया होगा, बाबा का स्थान बना हुआ है, बाबा के चित्र लगे हुए हैं, सब कुछ है। बात है सारी कि 24 घंटे में से कितने घंटे हमारा ध्यान जाता है इस बात पे, कारोबार में इतना मस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो करके मस्त हो जाते हैं, फिर किसी को याद दिलानी पड़ती है, कभी कभी और कोई नहीं तो पोतरे दोतरे आकर के याद दिलाते हैं। हम लेकिन ये एक लक्ष्य चाहिए, खुशी खुशी से, बड़े आनंद से, कि इतना मीठापन अपने अंदर रहे, वो मीठा सागर जो है ना बाबा, उसके साथ मन लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक मीठा रहता है। मन मना भाव जितना रहे उतना अच्छा है, और उसका आधार है, क्या आधार है, आज का दिन क्या याद दिलाता है, जन्माष्टमी का दिन है ना आज, गोप गोपियों को कौन सी ऐसी बात थी जो फट से एक्टिव कर देती थी, हाँ, नचाने लगती थी, क्या चीज थी, मुरली थी। तो कोशिश करके अपने अपने सेवा केंद्रों से मुरली की कॉपी लेना जरूरी है, बहन जी से कह करके एक कॉपी अपने पास रखो, जब समय मिले थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ो तो थोड़ा तो पढ़ो, उससे बड़ा मन को सुख मिलेगा। बाबा कहते थे जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। हम लोग आते थे बॉम्बे से या और कहीं से, नहा धो करके बाबा से मिलते तो कहते भोजन बाद में करना। आज की मुरली में बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट सुनाई है, पहले मुरली पढ़ो। तो सहज तरीका है, क्यों, 63 जन्म के जो संस्कार बन गए हुए हैं ना, जो वास्तव में हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है, वो संस्कारों को मिटाने का और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं उसको प्रज्वलित करने का, उसको प्रत्यक्ष करने का सहज साधन है बाबा की मुरली। तो मुरली से बहुत प्यार रखो तो मनमना भव हो जाएंगे, जितना मनमना भव रहेंगे अपने आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। नष्टो मोहा बनने के लिए घड़ी घड़ी ये नहीं याद दिलाना अपने आप को, मुझे नष्टो मोहा बनना है, नष्टो मोहा बनना है, हाँ वो नहीं करना, क्या बनना है? मुझे स्वाभाविक स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहना है, स्वाभाविक स्वरूप में बाबा की याद में रहना है। ये पक्का करते जाओ तो मोह नष्ट हो जाएगा। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए मनमना भव होके बैठेंगे, स्मृति स्वरूप बन के बैठेंगे, मन में एक ही बात आए, मैं और मुरलीधर, बस। चाहे अव्यक्त रूप से, चाहे निराकारी रूप से, एक दो को देखते रहो, क्योंकि जिससे बहुत प्यार होता है उसको ही देखना पसंद आता है। तो जितना बाबा को मन ही मन से देखते रहेंगे, सहज याद स्वतः रहेगी। सहज याद रहेगी तो बाबा के समान बन जाएंगे।